महाराज जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस शुभान स्थान में श्री गोविंद नारायण में जन्म की प्राप्ति के निमित्त आर्थिक प्राप्त हो उस आरती को प्राप्त करने के लिए उस विकलता और उस कंठा को प्राप्त करने के लिए श्री ब्रज गोपालों के श्री किशोरी जी के ग्रंथ में कहे गए उन अपूर्व जप प्रहलाद चित्र प्रहलाद जो वचन चित्रजल उन चित्रजल के वचनों का आस्वादन प्राप्त करने के लिए यहां विराजमान समस्त वैष्णव मंडली के शरणार्थियों में हमारा कुटुंब बन करने के प्रसंग में यह निरूपण कराई थी श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त उद्धव जी को प्रकट क्रिया में ब्रज में भेजा और ब्रज में उद्धव ब्रजवासियों का दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को एक बार अपना संयोगात्मक जो स्वरूप था उसका दर्शन कराया। यद्यपि भ्रमर जी की लीला प्रकट लीला में ही गमनागमन पूर्वक लीला है, अप्रकट लीला की लीला नहीं है, क्योंकि अप्रकट लीला में श्री कृष्ण का मथुरा जाना और मथुरा से लौट करके आना ये लीला नहीं है। परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने उद्धव के ब्रज आने पर विचार किया कि मेरा मित्र ब्रज में क्यों मेरे विकल ब्रज का दर्शन करे, वहां चंचलता उत्सुकता जो विराजमान है, आनंद जहां विराजमान है उस आनंदात्मक स्वरूप का ही दर्शन करें, अतः उद्धव को आपने वह स्वरूप दर्शन करें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रकट लीला में भी अप्रकट लीला के अनेक अनेक लीलाओं का श्री किशोरी जी श्री श्याम सुंदर परम कृपालु होकर के आस्वादन करा देंगे। वे इतने उदार है, एक भक्त जितना मांगता है जितना अभिलाषा करता है उससे भी ज्यादा वे दे सकते हैं और दे देते हैं। जैसे जो मंत्रोपासना करने वाले व्यक्ति हैं उनके व्यवहार में भी देखा जाता है कि है तो उनकी उपासना भोपाल उपासना निकुंज की उपासना, परंतु निकुंज की उपासना मंत्रोपासना करते हुए भी अन्य अन्य लीलाओं का भी स्मरण उनके द्वारा कर लिया ही जाता है। जैसे कहीं गोपाल यंत्र आदि में गोपाल स्तव आदि में बहुत सारी लीलाएं जो है उनका स्मरण हो रहा है। कार्य सपना मध्य दिव्य नृत्य करोगे नमामि देवी की क्रम नृत्य मानव समस्त। अब जहां गोपाल की उपासना हो रही है वह काव्य से सामग्री कहां से आ गए, परंतु काव्य के ऊपर भी नृत्य का तुम्हें विराजमान है और मंत्रोपासना की भी ध्यान रखा है। कभी कभी अन्य अन्य जो लीलाएं हैं वे अन्य अन्य लीलाएं भी आ जाती हैं। सारे स्वरूप श्री कृष्ण की कृपा के द्वारा कहीं पुरुष हो सकते हैं। जैसे गो गोप बलिता निकरई परिपम सांद्राम गुण छवि सुजात मनोहरांगम इत्यादि रूप में क्रम संहिता में क्रम जीविका में श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान दिया। जैसे पूर्व नारी रूप में अनेक बार रवि जल्दी उनका ध्यान करते हैं। निकुंज में भी सूचना भी इस शब्द का प्रयोग हो सकता है, सखीगढ़ कंत्र भी प्रयोग करते हैं। गोवर्धारण के रूप में भी उनके की लीला का कभी कभी स्मरण हो ही जाता है। तो उद्दान बाल गोगंड धृत गोवर्धना चलन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि बहुमन पंच नाम रूपायुक्त की उपस्थिति श्री गंगाचार्य जी के आए बोल हे नंद तुम्हारे पुत्र के अनेक नाम अनेक रूप है, इसलिए प्रभु कभी कभी अपने अन्य अन्य लीलाओं का भी दर्शन करा देते हैं। अगर यदि प्रकट लीला में ग्रह काल में भी संयोगात्मक स्वरूप का दर्शन करा दिया गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए ये लीला भी परम उपयोगी होकर के ही ग्रहण। उधर भी जो भीतर नंद भवन में पहाड़े कल के संक्रमण का कराए थे, श्री कृष्ण ने अपने संयोगात्मक स्वरूप को संयोगात्मक वृद्धि के आनंदात्मक स्वरूप को छिपा लिया और छिपा करके फिर से ग्रहात्मक जो स्वरूप था उसको प्रकट किया। जहां नंद भवन अत्यंत मलिन दिख रहा है, सारा वैभव विद्यमान है पर कोई संभालने वाला नहीं है, बाबा की रुचि नहीं, जहाँ सब ब्रजवासी व्याकुल होकर के बैठे हैं, धूल धूसरे होकर के विराजमान, जब भी नंद बाबा के उस रूप का दर्शन कर रहे और वहां बाबा को समझा रहे, बाबा को जब के लिए थोड़ा सा भोजन बनवाते हैं, वो सब भोजन करते हैं और फिर कुछ सब कुछ पूछ रहे थे कि भूषण का कल वर्णन कराए बाबा से। वो जब भी बोले बोले बाबा इतने विकल होकर के आप कह रहे हो कहीं जल्दी आएगा, बाबा व्याकुल होकर के कह रहे हैं अपने आए आज तो गोविंद गोविंद कब आएगा भैया मुझे तुझे बता, कल आएगा परसों आएगा 19वां श्लोक है, बोले अपने आए आज तो गोविंद प्रजन तकलीफ से तू, बोले एक बार भी तो क्या हमारा दर्शन करने के लिए कभी आएगा, परंतु उद्धव तक कुछ बोल नहीं सके अत्यंत शुद्ध व्याकुल हो रहे हैं। नंद बाबा पूछ रहे हैं कि हमें तो ये बता कि कन्हैया कब आएगा, कल आएगा परसों आएगा सात दिन में आएगा महीने में आएगा नहीं आएगा, एक बार आकर की तरह हमको संभाल को लेंगे, उसके मुख का स्मरण करते हम सबकी अत्यंत अत्यंत दशा व्याकुल दशा हो रही है। बाबा कहने लगे बोले जैसे ये कहे कि हम उसका ध्यान करें तो ध्यान करने से हमको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी, जब हम उसका ध्यान करने के लिए बैठते हैं कि हस्तम हस्तम चांद सर्वांग सुखला क्रिया, उसका स्मरण करने से हमारे दुख का संताप का नाश नहीं होता है, बस उसका स्मरण करने से हमारे शरीर में उनकी और विकल्प आती है। उधर जी ने बाबा से कहा अभी बाबा जब तुम्हारा कभी घर में मन न लगे व्याकुलता हो रही हो तो जरा बाहर घूमने आया करो, गैया चलाने के लिए चलाए चले जाया करो, ब्रजराज पहले भी गैया चलाने जाते ही थे, कन्हैया जब वो चलने करने नहीं जा रहे हो उसके पहले कुछ ब्रजराज ही गैया चलाने के लिए जाते थे, बोले बाबा आपका तो सारा बैल देखा हुआ है आप ही जरा सा गोपराज होकर के जैसे पहले जाते थे ऐसे अब गैया चलाने के लिए चले जाया करो, अरे गैया भी चलाने के लिए तो बहुत से गोप है, ठीक है जरा सा पर मैं यमुना जी के किनारे विचरण कर आओगे तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा मन बहल जाएगा। बाबा व्याकुल होकर के कहने लगे बोलो देशान मुकुंद पर भूषितान आत्मिकाल की क्षमा मनोव्याद सदात्मता, वो क्या बात कह रहा है कोई तर्क की, जब हम यमुना के किनारे पहुंचते हैं यमुना के किनारे पहुंचने पर हमको और ज्यादा व्याकुलता की प्राप्ति हो जाती है, सभी गंगा की गुहा का दर्शन करके कन्हैया की याद और ज्यादा बढ़ जाती है, जरा घटना नहीं है, जरा और ज्यादा बढ़ जाता है। जब गोवर्धन का दर्शन करते हैं शरीर का, उस समय कन्हैया ने हमारा कैसे पालन किया था, यह विचार करके हमारी बिना वेदना और ज्यादा बढ़ जाया करती है, वो घटती नहीं। मुकुंद पद भूषितान वन का दर्शन करके, जहां पर उन्होंने गैयाओं की दावानल से रक्षा की थी, इतनी इतनी लीलाएं की, अनेक अनेक अपनों को मारा, यहां पर विचित्र विचित्र लीलाएं हुई है, उनका दर्शन करके हमारा और स्नेह बढ़ जाता है, जरा बढ़ जाता है। इसलिए हम कैसे जाए मनोरंजन के लिए जाते हैं, बस मनोरंजन के लिए जाने पर ही व्याकुलता बढ़ जाती है। हम कहां तक कन्हैया ने हमारी संरक्षा की, इस बात को गिना दिए। ऐसा कहते कहते ही बाबा के हृदय में कहीं ऐश्वर्य का विवेक उत्पन्न हुआ है, और ऐश्वर्य विवेक उठाने करके कहने लगे कि मन ये सुगम से रावण क्यों प्राप्त और स्वरूप हमको तो ये लगता है कि राम कृष्ण ये दोनों हमारे यहाँ पर ईश्वर ही आए, कोई देवता नहीं हमारे यहाँ पर अवतार धारण किया है। ये बात बाबा का सिद्धांत नहीं है, जिकल सामने बाबा के मुख से निकले हुए ये वचन है। मन नहीं, यहाँ पर मन नहीं सबका प्रयोग है। बाबा तो कृष्ण को अपना पुत्र ही करके मानते हैं, परंतु कृष्ण के गुणों का स्मरण करते करते कहीं ऐश्वर्य विवेक के कभी उन्हें हुआ आया, और ऐश्वर्य का दर्शन करके उस ऐश्वर्य में कृष्ण की ईश्वरता का कहीं दर्शन कर लिया। ऐश्वर्य जो है, वैभव जो है, उसमें कृष्ण की ईश्वरता का बाबा कहीं विचार करने लगे कि गरगाचार्य जी कह रहे थे कि बाबा अपना नंदात्मक जो उनके नारायण समूह तेरह बेटा है, वो नारायण के समान होने वाला है। आहा, गरगाचार्य जी के इन वचनों को हमने सत्य होते हुए देखा, नारायण के गुण हो सकते हैं, ये सारे सारे गुण मेरे बेटा में विद्यमान हुए। नारायण की जैसे सब देवता उपासना करते हैं, ऐसे मैंने अपने बेटा की उपासना होते हुए अपनी आंखों से देखा। जिस समय वरुण देवता मुझे पकड़ करके ले गए, कन्हैया पीछे पीछे दौड़ा, और जो वरुण देवता के रूप में होता, वरुण देवता द्वार से कृष्ण को फंसा करके स्वागत करते हुए आए और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे परमात्मा, मेरे अपराध को आप क्षमा करेंगे, ये रहे आपके पिता, मेरे अज्ञानी सेवकों के द्वारा आपके पिता का हरण कर लिया गया है, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। वरुण देवता ने मेरे बेटा को मेरी आंखों के सामने उनके सिंहासन के ऊपर विराजमान करके उनका पूजन किया, और ये कहा कि कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा कृष्णा है, परमात्मा ने कहकर के आप परमात्मा हो, ये कहकर के मेरे सामने पूजन किया था। जैसे नारायण की पूजा की जाती है, ऐसे मेरे बेटा की पूजा की जाती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बाबा अपने पुत्र को नारायण समझते हैं, ये तात्पर्य कहा है। ये भाव बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र को चक्रवर्ती राज्य के ऊपर बैठा हुआ देखे, सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ देखे, उसके हृदय में विचार आता है कि आह, मेरा बेटा इतना ऊंचा, उसके वैभव का दर्शन करके जैसे उसके पिता के हृदय में ये भाव उत्पन्न नहीं होता है कि राजा है, बल्कि ये भाव उत्पन्न होता है कि मेरा बेटा इतने ऊंचे पद पर विराजमान है, वह अपने बात्सल्य को इसकी भावना से अपने पुत्र का जैसे दर्शन करता है, ऐसे पुत्र को ईश्वर रूप में पूजित होते हुए देखकर के भी श्री ब्रजराज को अपूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति हो रही है, अपने वास्तव्य का ही पोषण नंद रावण के द्वारा हो रहा है। कृष्ण के प्रति कोई आदर की भावना उत्पन्न हो गई हो तो बात नहीं है, कृष्ण के प्रति कोई अपने हृदय में शांत की भावना उत्पन्न हो गई हो तो बात नहीं है, स्वयं गौरव की भावना उत्पन्न हो रही है कि देखो है किसी का बेटा ऐसा, इससे उनके पद के ऊपर बधाई मानी। तो कह रहे हैं बाबा मन ने रावण से ये बात वरुण देवता के द्वारा मैंने पूजित देखा, तो यही बात मैंने इनके बेटा की पूजा करते हुए विराजमान होते हैं, ہمارا بیٹا ایسا دیو ہو کر چلے آئے گا. اب یہاں پر جو ایشوری جان ہے وہ ایشوری جان برہار میں پاسل بھاو کا ایک سنچاری بھاو ہو کر کے وہ ایشوری جان آیا ہے. یہ جو شام بھکتی کا جو گڑ ہے کرشن کا پرماتما روپ میں جو درشن شانتی کا لکشن ہے اور یہ پرماتما روپ میں جو درشن ہے یہ پاسل بھاو کا سنچاری بھاو ہو کر کے ہی بابا کے ہر میں براجمان ہے. اس کے دوارا کچھ ہو رہا ہے پاسل بھاو. ब्रह्मा के कहने पर गर्गाचर सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के कहने से नारायण कभी कभी अवसर होते हैं. नारायण ने मेरे बेटा के द्वारा जगत में पुष्पों का संहार करवाया. बाबा के हृदय में भावना क्या है कि मेरा बेटा तो मेरा ही है. नारायण के महिमा का कोई ठिकाना नहीं. नारायण अपनी महिमा से मेरे पुत्र में ऐसी सामर्थ्य स्थापित कर देते हैं जिससे वो ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य कर लेता है. अब नारायण के लिए कौन सी बड़ी बात है. मुख पर वातावरण पग्निंदम मेरे दुग्धमुख बालक के द्वारा यदि नारायण को अस्वसंहार कराना है और नारायण अस्वसंहार करावे इसमें कौन सी बड़ी बात है. मेरे पिता ने अपने को नहीं मारा. नारायण ने मेरे बेटा में अवस्थित होकर के शक्ति की स्थापना करके असरों का संहार कर दिया. बाबा यही मान लिया. ये तो हम रसिकों की बात अलग है. बेपी नारायण को कृष्ण का अवतार मानेंगे कृष्ण को अवतारी मानेंगे परंतु जहां जगत की बात है जगत में तो लक्ष्मी और नारायण यही दो सबसे बड़े. तो बाबा तो यही माने कि नारायण ने मेरे पुत्र के माध्यम से ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य करा दिए. मेरे बेटा में उन्होंने ना अपने शरीर के गुणों की स्थापना कर ली और मैं भी एक नारायण का सेवक हूँ और मेरे सारा ये जो जगत है मेरे जो पुत्र पौत्र आदि ये भी पुत्र आदि ये भी सब नारायण की कृपा के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुए हैं. बाबा कृष्ण को ईश्वर करके नहीं मानते. अन्यथा क्या कृष्ण की ये सामर्थ्य थी कि वो संतम नारायण पर नारायण का प्राण संत शरीर का व्यक्ति जिसने 10,000 हाथियों का बल बनाया बलों को इस्तेमाल किया ये कृष्ण की सामर्थ्य नहीं थी. बाबा को विचार करने लगे बल कमी आने कितने ऊंचे ऊंचे पुष्पों का बल किया है. ऐश्वर्य विवेक के द्वारा अपने पुत्र की महिला का स्मरण करने के लिए विधा को शांत करने के लिए विराजमान हुए पर ऐश्वर्य विवेक आने पर बाबा का विधा उल्टा समित नहीं हुआ उल्टा और ज्यादा बढ़ गया. मन में विचार कर रहे हैं बोले हाय कहां वहां पर हमारी रक्षा की विचार किया जाए. बाबा थोड़े से धैर्यवान थे इसलिए धैर्य धारण करके सो भी बैठे. यशोदा जी को बिल्कुल भी धैर्य धारण नहीं कर पाए. श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि यशोदा भरणमानन श्रीवंतूवाक्षी स्नेहोधारा यशोदा भरणमानन पुत्र श्री यशोदा जी कृष्ण के चरित्रों को श्रवण करके व्याकुल हो रहे हैं. बाबा तमाम वर्णन करते रहे जो उससे देखो पाल वृक्षों को नष्ट कर दिया. हिरण्यकश्यप जो है उसको रामकृष्ण उन्होंने समाप्त कर दिया. उससे 3 पाल के बराबर लंबे जो धनुष था उस धनुष को भी उसने तोड़ दिया. उससे 7 दिन पर्यंत अपने ऊपर धारण किया. उसने श्रवणासन का वध किया. उसने अर्थ श्रावण का वध किया. उसने बनासन का वध किया. एक अद्भुत पूजा कर रहे हैं. बाबा थोड़ी सी धैर्य धारण करके कहीं अपने मन की बात कह भी देते हैं पर यशोदा यशोदा के नेत्रों से तो निरंतर अच्छी उठारा प्रभावित स्नेह के कारण यशोदा के तरों से दूध की धारा प्रवाहित होती हुई. वे मत परोता यशोदा के प्रेम की ही ये विशेषता है। वहां पर स्नेह में दूर स्थानों से पिचकारी की तरह से कहीं प्रभावित दूसरी माओ में यशोदा जो है वे स्नेह में जिनका पलों से दुग्ध की धारा प्रभावित हो रही है यशोदा मऊ होकर के विराजमान है कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि बोलना होता है तब जब से कहीं शब्द अपने पास में हो यदि शब्द अपने पास में हो न हो तो फिर बोल सकने की प्राप्ति नहीं भगवती कृष्ण नंदेशोदय दीक्षांत राजम पर्व नंद माधुर्धव बुला इस प्रकार नंद यशोदा के अपूर्व रूप से गृहस्थ व्याकुल होने पर उनके अंगा का दर्शन करके श्री उद्धव जी का रहा ले गया और उद्धव जी नंद यशोदा इन दोनों को ठीक देते हुए बोले युवान समय बोले आहा आप परम परम धन्यवाद भाग्यवान होकर के विराजमान आज मेरे भाग्य का कोई ख्याल नहीं ने मुझे यहाँ भेजा मैं वो देवकी बसदेव के भाग्य का दर्शन करके ही आनंदित हो रहा था। आज देवकी बसदेव का कुछ ध्यान नहीं है जिनके ऐसे भाग्य जिनकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा पधारे और उन्होंने कर्म का वध किया देवकी बसदेव से ऐसे मधुर वचनों को कहकर के उनको श्री कृष्ण धैर्य प्रदान कर रहे हैं। देवकी बसदेव बड़े भाग्यशाली है अपने हाथ से देवी मंदिर को कंस को कारागार से मुक्त करके कह रहे हैं बोले हे पिता हे माता हमको आपके पास में आने में बड़ा विलंब हुआ आप हमारे अपराध को क्षमा करेंगे। जिस पुत्र को माता पिता के अनुग्रह के द्वारा देव प्राप्त हुआ और वह पुत्र यदि पिता की सेवा न करे माता की सेवा न करे तो वह सबसे बड़ा अपराधी है। को देव जनपद कोष को यथा जिस माता पिता जिसके पास यह देव प्राप्त हुआ जिस देव के द्वारा हम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब वस्तुओं को प्राप्त करेंगे भक्ति ज्ञान सब कुछ इस देव के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। तो सर्वास्थ साधु को देव जनता संपूर्ण अर्थों को प्राप्त कराने वाला देव जिन माता पिता ने प्राप्त कराया और उस देव को प्राप्त करके समर्थ होने पर भी जो पुत्र अपने पिता को वृत्ति प्रदान न करे माता को वृत्ति प्रदान न करे वह वास्तव में अपराधी जिस समय वह मरता है उस समय जब महाराज के लोक में उसको जाना पड़ता है मानसिक खाद्य होती है वजन है उसे अपना मांस ही खाने को मिलता है। ऐसे मधु बच्चे कहकर के श्री कृष्ण देव की बच्चे को धीर प्रदान कर रहे हैं। मैंने तो मकान में देव की बच्चे को सौभाग्य करने की तरह किया और ये विचार किया कि आहार देव की बच्चे का जैसा सौभाग्य ऐसा सौभाग्य और आपके जैसे बच्चे देव की बच्चे से कहे वैसे अदिति कक्षर से भी नहीं कहे अंतिम अक्षर से हमारे आप उत्पन्न हुए बावन रूप में पर उनकी अपेक्षा देव की बच्चे का भाग अधिक है। अंतिम अक्षर की सेवा करते हुए कभी भी विद्यमान नहीं हुए बावन भगवान पर यहाँ पर देव की बच्चे की सेवा करते हुए श्री कृष्ण विराजमान हो रहे हैं ये माँ के चरणों की वंदना कर रहे हैं माँ के चरणों की वंदना कर रहे हैं। जब मैं फिर आया हूँ मैंने कृपा करके मुझको पर जाकर के मुझे पता लगा अहो युवाम स्वाग्य समय नीनम दे नाम ए मानव कि आपका जैसा सौभाग्य है ऐसा सौभाग्य किसी दूसरे नेता हो नहीं नारायण यज्ञता मंगली बुद्धि आपने नारायण में ऐसी बुद्धि कर रखी है उस सौभाग्य का उस प्रेम का क्या वर्णन किया जाए जिस प्रेम में ऐश्वर्य ज्ञान को भी आप एक ओर रख करके सारे स्वाभाविक भाव के द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करते हुए विराजमान है। श्री कृष्ण यद्यप नारायण है पर आप उसको नारायण करके मान रहे हैं आप उसको अपना उसमें करके ही मान लीजिए और आपकी तो नारायण में ऐसी पावर पूर्ति रख गई बस उसको हर लोग प्रभाव करेगा ही। आपने जगत नारायण उसको उनकी आराधना नहीं की है तो क्यों उनकी आराधना की है और आखिर में हेतु में नारायण है आप ऐसी प्रीति पूर्वक सेवा कर रहे हो तो आप परम भाग्यशाली है देवी की अपेक्षा श्री यशोदा का जो सौभाग्य यशोदा का सौभाग्य अदिति के सत्य अपेक्षा देवी की बसदेव का सौभाग्य है और देवी की बसदेव के सौभाग्य की अपेक्षा श्री यशोदा नंद का जो सौभाग्य है वो अतिशय अधिक है क्योंकि जहाँ लालन पालन करते हुए आप उनसे आनंद खो रहे हैं जहाँ अनुशासन करते हुए श्री देव की बसदेव की अपेक्षा नंद यशोदा का सौभाग्य अपने आप हो रहा है। अतः श्री देव की यशोदा जी की महिमा का गायन करते हुए स्वयं कहने लगते हैं कि आहा नारायण को आपको भगवान देव नाम ज्ञान भोग का होता है ज्ञान नाम सातु होता नाम यथा भक्त बता नारायण को आपको भगवान ले अन्य जो देव आगे है उनको प्रदान नहीं कर सकते ज्ञान जो ज्ञानी जन है उनको भी ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ यथा भक्त मतान के हो जैसे इस वृंदावन में इस वृंद में भक्तगणों को आपने जैसा सुख प्रदान किया वैसा सुख आप कभी दूसरे को नहीं देते। नारायण को खापा कहकर के श्री कृष्ण सुख पूर्वक प्राप्त नहीं है अगर सुख साध्य नहीं है सुख प्रदाता नहीं है और सुख रूप भी नहीं नंद यशोदा को जैसा सुख की प्राप्ति हुई ऐसी सुख रूपता जिसको तो सुख रूप में किसी दूसरे ने नहीं पाया नंद यशोदा को जैसे स्वर्णता से परिणाम की प्राप्ति हुए ऐसे किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हुए और जैसा सुख नंद यशोदा को प्रदान कर रहे हैं ऐसा सुख भी किसी दूसरे को प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो यशोदा में कार्य सौभाग्य है श्री यशोदा जी का सौभाग्य वो सौभाग्य कोई लेकिन प्राप्त नहीं होता जिनकी महिमा का गायन करने के लिए सब अपनों का अनेक अनेक जगह महिमा का गायन किया गया वर्णन किया गया श्री यशोदा में जो सौभाग्य विद्यमान है वैसा सौभाग्य ब्रह्मा को प्राप्त नहीं हुआ वैसा सौभाग्य शिव जी को प्राप्त नहीं हुआ वैसा सौभाग्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं हुआ एवं जनंचो लवते प्रसादम न स्त्री न सर्व के मुताब आई एवं जनंचो लवते प्रसादम जैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ श्री यशोदा को ऐसा एवं जनंचो न बोलो न स्त्री अपनी संख्या प्रसादम लेवे यद्यपि यह पश्चाप विमुक्तता गोपी श्री यशोदा ने जैसा सौभाग्य से प्राप्त किया वैसा सौभाग्य किसी दूसरे को नहीं मिला। ब्रह्मा भले आपके पुत्र है और ब्रह्मा को ये प्रेम वश्यता प्राप्त नहीं हुई शिवजी भले आपके मित्र हैं आपके अभिन्न स्वरूप ही है अवतारी है पर शिव को वह प्रेम वश्यता की प्राप्ति नहीं हुई यशोदा जैसे को भाग रही है ऐसे प्रेम वश्यता प्रेम वश होकर के न तो किसी दूसरे से बने न किसी में ये सामर्थ्य कि वो किसी को भाग रही है। और लक्ष्मी जी जब आपके वक्त पंत्र पर विराजमान है पर लक्ष्मी की भी ये सामर्थ्य नहीं कि वे श्री कृष्ण को बांध लें नारायण को बांध लें वे सेवा करती हुई विराजमान हो रही है पर श्री बलिभवना लोगों की विशेषता यशोदा जी की विशेषता कि वे श्री कृष्ण को प्रेम की डोरी से बांध लें प्रसादन ले रहे गोपी किसी दूसरे को ये कृपा भी नहीं मिली सुखदेव जी तो प्रसाद शब्द का प्रयोग करने लगी संकोच कर रहे हैं दामोदर जी का स्मरण में और वहां पर कह रहे हैं जब तक इसको प्रसाद भी कह आ जाए कोई अशुभ वक्त यहाँ पर उल्टी बात हो रही है उल्टी यशोदा कृष्ण के ऊपर कृपा करेंगे कृष्ण यशोदा के ऊपर कृपा नहीं करेंगे प्रसाद करने वाले कृपा करने वाले तो यशोदा है कृष्ण नहीं है तो प्रसाद शब्द का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है इसलिए सुखदेव जी कोई शब्द मिला नहीं जिससे जब शब्द का प्रयोग करने लगे तो कोई जो अपूर्ण वस्तु जिसको क्या कहा गया है जो यशोदा को प्राप्त है ऐसी वस्तु और किसी दूसरे को प्राप्त होनी नहीं चाहिए। यशोदा के सौभाग्य का क्या रूप किया जाए श्री नंदबाबा के मां के कहा क्या उनको किया जाए, जिन्होंने अपने पुत्र को गोदी में विराजमान करके उनका नाकर सत्कार कर रहे हैं, उनका लालन कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, उनका कहते हुए विद्यमान हो रहे हैं, लालन पालन संस्कार करते हुए भी विराजमान। तो युवा स्वागत करो, आप स्वागत नहीं, स्वागत पद नहीं, स्वागत पद हो सकती है। अन्य लोगों को सम्मान प्रदान करने वाले आप ही हैं, आपके सौभाग्य का मानव मैंने आप विशेष रूप से कह रहे हैं कि आप सम्मान प्रदान करने वाले हैं, जो बाबा गंभीर होने के कारण सम्मान पुष्टि कर रहे हैं, बाबा गंभीर होने के कारण उद्धव पधारे तो स्वागत पुष्टि कर रहे हैं, कहीं उद्धव के भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, उनके शुभ निवास की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पंत यशोदा जी को दिल्ली में हो रही है। तो मानव कहकर के आप सबको सम्मान प्रदान करने वाले हैं, तुम्हारी नारायण कैसी प्रीति लगी थी, आप क्या